I think you're on mute.
Workday is starting to sound the same.
I think you're on mute.
Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how.
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है.
पंचतंत्र.
नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ विष्णु शर्मा की लिखी संपूर्ण पंचतंत्र की कहानियाँ. इस कहानी का नाम है सन्यासी और धूर्त. किसी सुनसान स्थान में एक मठ था. वहाँ देव शर्मा नाम का सन्यासी रहता था. अनेक महात्मा पुरुषों के लिए अच्छे कपड़ों को बेचने से कुछ समय में उसके पास बहुत सारा धन जमा हो गया. तब से वो किसी का विश्वास नहीं करता था. वो रात दिन उस धन को बगल में दबाए रहता था. किसी ने सच कहा है, धन पैदा करने में दुख, पैदा किए धन की रक्षा करने में दुख, आने में दुख और जाने में दुख. ऐसे कष्ट को आश्रय देने वाले धन को धिक्कार है. कुछ समय बाद आषाढ़ भूति नाम का पराये धन का हरण करने वाला एक धूर्त उसकी बगल में उस धन को देखकर सोचने लगा, कैसे इसका धन प्राप्त करूं? मजबूत पत्थर के बने हुए इसके मठ में सेंध भी नहीं लग सकती. ऊंचा अधिक होने के कारण फांद कर भी प्रवेश नहीं हो सकता. इसलिए इसको अपनी बात से विश्वास दिलाकर मैं इसका शिष्य बनूं, जिससे ये शायद मेरे विश्वास में आ जाए. कहा है, इच्छा रहित व्यक्ति अधिकारी नहीं होता, बिना काम का व्यक्ति श्रृंगार प्रिय नहीं होता, मूर्ख कभी अच्छी बात नहीं बोलता और साफ साफ कहने वाला ठग नहीं होता. ये सोचकर वो उसके पास गया और ओम नमः शिवाय कहकर साष्टांग प्रणाम करके नम्रता से बोला, भगवान ये संसार असार है. पहाड़ी नदी की गति की तरह यौवन चंचल है, घास की आग की तरह क्षणिक जीवन है, शरद ऋतु के बादल की तरह भोग है, सपने की तरह मित्र पुत्र पत्नी वर्ग का संबंध है. ये मैंने अच्छी तरह जान लिया है. इसलिए क्या करने से मैं संसार सागर के पार हो सकूंगा? ये सुनकर देव शर्मा आदरपूर्वक बोला, पुत्र तुम धन्य हो जो पहली अवस्था में ही तुझमें ये वैराग्य उत्पन्न हो गया है. कहा भी है, जो पहली अवस्था में शांत हो वही शांत है. ऐसा मैं मानता हूँ. धातुओं यानी कि शरीर के अंगों के कमजोर हो जाने पर कौन शांत नहीं हो जाता? बुढ़ापा पहले सत्पुरुषों के मन में और बाद में शरीर में आता है, किंतु असंतों के शरीर में आकर भी वो मन में नहीं आता है. और मुझसे जो तुम संसार सागर से पार होने का उपाय पूछ रहे हो, तो सुनो, कोई शूद्र चांडाल अथवा जटाधारी हो तो भी शिव मंत्र से दीक्षित होकर शरीर में भस्म लगाने से वो शिव स्वरूप हो जाता है. षडक्षर मंत्र से जो एक फूल भी चढ़ाता है उसका फिर जन्म नहीं होता है. ये सुनकर आषाढ़ भूति ने उसके पैरों को पकड़ लिया और बड़े आदर से बोला, भगवान तो दीक्षा देकर आप मेरे ऊपर कृपा करें. देव शर्मा बोला, वत्स तुम्हारे ऊपर मैं कृपा करूंगा, परंतु रात में तुम मठ में नहीं आना, क्योंकि मेरे और तुम्हारे जैसे योगियों का अकेला रहना ही प्रशंसनीय होता है. कहा भी है, दुर्मंत्र यानी कि गलत मंत्र, दुर्मंत्र से राजा, संगति से यति यानी सन्यासी, लाड़ प्यार से पुत्र, न पढ़ने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दुष्टों की संगति से शील, निष्ठुर से मित्रता, अन्याय से समृद्धि, परदेश में रहने से स्नेह, गर्व से स्त्री, न देखने से खेती तथा त्याग और आलस से धन नष्ट हो जाता है. तुम्हें व्रत लेने के बाद मठ के द्वार पर घास की कुटिया में रहना चाहिए. वो बोला, भगवान आपकी आज्ञा सिर माथे पर, दूसरे लोक में मंगल हो यही मेरा उद्देश्य है. तब प्रतिज्ञा पूर्वक देव शर्मा ने कृपा करके शास्त्र की विधि से उसको अपना शिष्य बना लिया. वो भी हाथ पैर आदि दबाकर उनको संतुष्ट करने लगा. उसके बाद भी वो मुनि बगल से धन की गठरी को नहीं छोड़ता था. कुछ समय बीतने पर आषाढ़ भूति सोचने लगा, ओहो किसी प्रकार ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या दिन में इन्हें शस्त्र से मार दूं, जहर दे दूं या जानवर के समान मार डालूं? उसके ऐसा विचार करते समय देव शर्मा के किसी अन्य शिष्य का पुत्र एक गांव से निमंत्रण देने आया. वो बोला, भगवन, मेरा घर पवित्र करने के लिए आप मेरे घर आइए। ये सुनकर देव शर्मा आषाढ़ भूति के साथ खुशी खुशी चल दिए। जाते समय रास्ते में एक नदी आई, उसे देखकर गठरी को बगल में से निकालकर उन्होंने गुदड़ी में छुपा दिया और स्नान और देवता आदि की पूजा संपन्न करके बोले, आषाढ़ भूति, जब तक मैं शौच करके ना आऊं तब तक तुम भगवान की इस गठरी की सावधानी से रक्षा करना। उसके चले जाने पर आषाढ़ भूति गठरी में से धन को लेकर भाग गया। देव शर्मा भी शिष्य के गुणों से प्रसन्न होकर विश्वास पूर्वक देर तक बैठा रहा, तभी भेड़ों की लड़ाई देखने लगा। गुस्से से भरी दोनों भेड़ें पीछे हटकर फिर बहुत तेजी से आगे आकर एक दूसरे के मस्तक पर प्रहार कर रही थी, जिससे बहुत खून निकल रहा था। एक गीदड़ जीभ की चंचलता के कारण वहां आकर खून पी रहा था। देव शर्मा ये देखकर सोचने लगा, ओहो, ये गीदड़ बहुत मंदबुद्धि है, ऐसी मेरी धारणा है। उसी समय खून पीने की चंचलता से उस बात को सोचता हुआ धन को याद करके वो धीरे धीरे नदी तट पर गया। वहां उसने आषाढ़ भूति को नहीं देखा। तब उत्सुकता से उसने गठरी को देखा तो उसमें धन को नहीं पाया। तब हाय, मैं ठगा गया, ये कहकर बेहोश सा होकर जमीन पर बैठकर रोने लगा। आषाढ़ भूति, मुझे ठग कर तुम कहाँ गए, मुझे उत्तर तो दो। इस प्रकार बहुत रोकर पैरों के निशान देखकर उसे खोजता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। चलते चलते शाम के समय किसी गांव में पहुंचा। उस गांव से कोई शराबी अपनी पत्नी के साथ शराब पीने के लिए नगर की ओर जा रहा था। उसको देखकर देव शर्मा बोला, भद्र, हम शाम के समय तुम्हारे पास आए हैं। इस गांव में मैं किसी को नहीं जानता, इसलिए आप अतिथि धर्म स्वीकार कीजिए। कहा भी है, गृहस्थ के यहाँ शाम के समय अतिथि आ पहुँचे और गृहस्थ उसकी पूजा करे तो वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही घास, भूमि, जल और चौथी सत्य एवं मधुर वाणी, ये चीज़ें सत्पुरुषों के घर से कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। अतिथि का स्वागत करने से अग्नि, आसन से इंद्र, चरण धोने से पितृ और अर्ध्य देने से शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात सुनकर शराबी अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, तुम इस अतिथि को लेकर घर जाओ, इसका चरण धो और भोजन पलंग आदि से सत्कार करके घर में ही रहो। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए बहुत सारी शराब लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चला गया। उसकी वह व्यभिचारिणी पत्नी देव शर्मा को लेकर हंसती और मन में अपने यार देवदत्त का ध्यान करती हुई घर के लिए चल दी। सच ही कहा है, बादलों से छाए हुए दिन में, घने अंधेरे में, जहाँ किसी का प्रवेश न हो ऐसी गलियों में और पति के विदेश जाने पर चपल स्त्रियों को बहुत सुख मिलता है, वैसे ही चोरी से रति की लालची स्त्रियाँ पलंग पर सोने को पति की अनुकूलता तथा मनोहर शैया को भी घास के समान तुच्छ समझती हैं। और भी कुलटाओं की शर्म पति के साथ की क्रीड़ा को और श्रृंगार हड्डियों को जलाती है। उसे मनोहर बातें कड़वी लगती हैं। बहुत कहने से क्या, कोई भी कुलटा स्त्री पति से संतुष्ट नहीं होती है। कुल का पतन, मनुष्यों की निंदा, बंधन और जीवन में संदेह, ये सब विडंबनाएं पराए पुरुष में मन लगाने वाली कुलटा स्त्री स्वीकार कर लेती है। शराबी की पत्नी घर पहुंची तो देव शर्मा को बिना बिछौने की टूटी हुई खाट देकर बोली, भगवान, मैं दूसरे गांव से आई हुई अपनी एक सखी से हालचाल पूछकर जल्दी ही लौट आऊंगी, तब तक आप हमारे घर में सावधानी से रहिए। ये कहकर और श्रृंगार करके वो देवदत्त के पास चल दी। इसी समय उसका स्वामी नशे में धुत होकर बाल बिखराए लड़खड़ाता हुआ शराब का बर्तन लिए आ पहुंचा। उसको देखकर वो तुरंत लौट पड़ी और श्रृंगार उतारकर पहले की तरह बैठ गई। उसके स्वामी ने उसे अद्भुत श्रृंगार किए देख लिया। पहले ही कानों से सुनी उसकी निंदा से क्षुब्ध हृदय होकर वो अपने गुस्से को छिपाए रहता था। इस समय उसकी ऐसी कोशिश देख तथा उस पुरानी बात का विश्वास करके वो गुस्से से भरकर उससे बोला, पापी व्यभिचारिणी, कहाँ जा रही थी? वो बोली, मैं तो तुम्हारे पास से आकर कहीं भी नहीं गई, शराब पीकर बेकार की ऊटपटांग बातें क्यों बोल रहे हो? सच ही कहा है, व्याकुलता, जमीन पर गिरना और जो मन में आए उसे कहना, सन्निपात के ये सभी निशान शराब में दिखाई देते हैं। हाथ में कपकपी, वस्त्रों का त्याग, तेज की कमी और क्रोध की इस अवस्था का सूर्य भी अनुभव करते हैं, तब दूसरों की कौन कहे। अस्त होते समय सूर्य का भी यही हाल होता है। वो भी उसकी उल्टी बातें और बिखरे हुए बाल देखकर बोला, बहुत दिनों से मैंने तुम्हारी बदनामी सुन रखी है। आज स्वयं देखकर मुझे विश्वास हो गया है, अब मैं तुमको उचित दंड दूंगा। ये कहकर डंडों की मार से उसने उसे अधमरा करके एक खंबे से मजबूती से बांध दिया और नशे में चूर होकर नींद में सो गया। इसी समय उसकी सखी नाइन शराबी को सोता हुआ देखकर आकर उससे बोली, सखी, देवदत्त उस जगह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम जल्दी वहां जाओ। वो बोली, मेरी हालत तो देखो, ऐसी हालत में भला मैं कैसे जा सकती हूँ, इसलिए तुम ही जाकर उस कामी से कह दो कि आज की रात उसके साथ समागम नहीं होगा। नाइन बोली,